जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद।
भगवान उसके सामने उतर आते हैं, झलक दर्शन देते हैं, आनंद के साथ में वह हंसने लगता है और नाम चलता रहता है, चित्त एकदम प्रफुल्ल रोम रोम हर्ष से उमड़ पड़ता है। थोड़ी देर के बाद में देखा जा रहे प्रभु कहां चले गए, बस वहीं पर गिर करके जमीन में लोटता हुआ हाय हाय करने लगता है। किंतु वही राधा रमन हरि गोविंद राधा रमन हरि लोटता पड़ा, आंख से आंसुओं की धारा गिर रही। प्रभु ये आकर के पूछ दें तो पूछे, इस प्रकार से कभी रोता है और कभी प्रकाश होता है। थोड़ी देर में फिर दर्शन हो गया, एकदम आनंद से दौड़ता है। लोग देखते हैं, अरे किस लिए दौड़ रहा है, ये पागल हो गया जरूर, किंतु वो किस लिए दौड़ रहा है, सामने दिखाई पड़ रहे हैं श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए, मधुर मुस्कान हमारे तरफ में मुस्कुराते हुए मन बुला रहे हैं, बंसी की धीरे धीरे तान चल रही और पीछे पीछे हट रहे हैं, साधक आगे बढ़ रहा है, अब दौड़ा उसके लिए एक पेड़ के नीचे छिप गए, न जाने कहां से दस एकदम गिर करके मूर्छित हो गए। कितना आनंद और रस इस नाम में है, यदि ऐसा हो हमारे भक्त जितने हैं ना, ये सब ऐसे ही किए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर तक, नरोत्तम ठाकुर तक, हमारे बिल्लो मंगल जी हैं, मीराबाई हैं, इस तरह से क्यों रो रही हैं, कभी हंस रही हैं, कभी चिल्ला रही हैं, कुछ पागल जैसी बनी हुई हैं, कपड़े को उठाने का होश नहीं, कपड़ा कहाँ गिर रहा, कहाँ क्या हो रहा है नहीं? इसलिए नाम ऐसा यदि हो, एकाग्रचित कर दिया हमको, संसार की और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। भाई प्रभु भी तो देखने वाले हैं ना, विचार करने वाले, बुद्धिमान है ना, तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तो नहीं। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा नैनंगल दास सुधार, ओ मैं कम नाम करूं भगवान का, आंखों से आंसुओं की अविरत धारा, आंखों के आंसुओं की धारा और साथ साथ में हृदय गदगद रोमांच एकदम हो, पुलकित होता है, द्रवित हो। यदि द्रवित नहीं होता तो समझो अभी नाम लेने में अभी अपराध है, कर्मों का भी फेर है, कुछ गड़बड़ी है। इसलिए ये उत्साहमयी और घन तरला और ऐसे ही चलती है, ऐसा नाम होना चाहिए। कथा सुन रहे हैं ना तो एकदम निविष्ट होकर के मानो अमृत पान कर रहे हैं। जब ऐसा नहीं होता तो ऐसा ही समझिए जी हमारे पूर्व जन्मों का कुछ संस्कार की गड़बड़ी या अपराध या दोष त्रुटि है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, यदि उद्देश्य रहेगा जी हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, तो भक्ति वहां तक नहीं जाएगी। और जिसको ये संसारी किसी प्रकार की, हाँ मोक्ष, मोक्ष की तो बात क्या कहे, बैकुंठ की हमको जरूरत नहीं है, हम तो कृष्ण के पीछे पीछे वृंदावन में कुंजों की तरफ में हम वहां पर चलेंगे, रहेंगे उनकी सेवा कर, गोपियों जैसे कृष्ण की सेवा कर, सखाओं जैसे कृष्ण के गले में हाथ लगा करके, और ऐसा करें तब तो भक्ति बढ़ेगी। ये है निष्ठा वाली, अभी अभी अनिष्ठित हम लोगों की है, तो ये भी घन तरला इसको बतलाया, प्रवेश नहीं होने से निरुत्साहित हो जाते हैं, और जिस समय में प्रवेश नहीं होता है उस समय में निराश हो जाते हैं, थोड़ा सा मिल जाता है तो फिर उसके लिए बहुत, गुरु वैष्णव का संग होता है तो उल्लास हो जाता है, हाँ और अब कुछ मिलने वाला है, अब कुछ ठीक रास्ते पर है। इसलिए अभी निष्ठिता नहीं हुई, ये सब ये जब जितना बड़ा अनिश्चितता माने बेलागाम भक्ति अभी नहीं हुआ है, इसमें एक रेगुलराइज भक्ति नहीं हुई है, एक जब इसको इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक व्यूढ़ विकल्प कहते हैं संस्कृत शब्द है, इसका तात्पर्य ये है संकल्प और विकल्प, संकल्प विकल्प क्या, ये करूं कि ना करूं, ऐसा करूं कि ना करूं, ऐसा करना तो उचित है, फिर सोचता है ऐसा नहीं करना भी, कैसे, जैसे ऐसा विकल्प होता है मैं परिवार के साथ में भाई सबको लेकर के भजन करूं या अकेले करूं, समुचे परिवार को लेकर के करूं या अकेले? यदि सब परिवार को लेकर के करते हैं तो सबका विचार तो एक नहीं है, ये तो बड़ा भारी असंभव है। एक तरह का खान पान नहीं है, व्यवहार नहीं है, एक तरह की बुद्धि नहीं है, ये सबको लेकर के असंभव है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसा करूं घर को पूरा ऐसा बना लूं पूरे सब वैष्णव हो जाए, घर में एक ही तरह का खान पान हो। अब उसमें कोई प्याज बना रहा है, कोई लहसुन बना रहा है, कोई अंडे बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मदिरा पान करने का आदि है, कोई कुछ का है, ये सबको छुड़ा करके सबको वैष्णव बना करके एक साथ में भजन करो, इनका भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी सब प्रकार से सुविधा हो जाएगी। अथवा मैं ये सबको छोड़ करके, ये तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनने वाले हैं, बहुत चेष्टा हमने की नहीं सुना, तो ये घर को छोड़ करके, ये सब तो नश्वर है, ये सब तो नाश हो ही जाएगा इन सब चीजों का, इसलिए इनको छोड़ करके भजन करो। क्या करूं? कभी कहता है जैसे छोड़ करके करें एकांत में, नहीं तो होगा नहीं। और कभी सोचता है जैसे इनको कैसे छोड़ दूं, माता पिता भाई बंधु पुत्र कन्या धन संपत्ति, ये कैसे छोड़ू? ये संकल्प विकल्प इसको कहते हैं ना? अच्छा, फिर सोचता है, अच्छा एक बात करो, सब छोड़ छाट करके वृंदावन में चला जाऊं, हरिद्वार में चला जाऊं, अब जरूरत नहीं है, बहुत कर लिया, आधी उम्र बीत गई है, अब वृंदावन में या हरिद्वार में रहेंगे, गंगा में गोता लगाएंगे और कुछ मांग करके खा लेंगे, इन लोगों से कुछ लेंगे भी नहीं, ये संकल्प होता है। फिर कहते हैं, अच्छा भाई अभी तक मैंने तो अभी नई शादी की, घर भी नया बनाया, बिजनेस भी अभी नया तैयार कर रहा हूं, ये सबको कौन देखेगा? कौन देखेगा? एक चिंता और आई, क्या करूं? अच्छा एक बात करूं, एक गाय है ना, उसको भूख लगी तो एक खेत में चरने गई जिसमें कि गेहूं चना और दूसरे सब चीज हैं लगे हुए हैं, वो जा करके उसमें खा लिया, कितना खाएगी? जब तक पेट नहीं भरा, पेट भरने के बाद क्या होगा? उसे निकल करके चली आएगी। ऐसे ही मैं करूं, अभी भोग मेरा पूरा हुआ नहीं, इन सबको अच्छी तरह से भोग करके समझ करके जब पूरा हो जाएगा, भूख मिट जाएगी, अपने आप उसको छोड़ करके भगवान का भजन करूंगा, ये उचित तरीका है। फिर सोचा जे गाय तो फिर दूसरे दिन भी आती है, फिर तीसरे दिन आती है, ये न तो भूख खत्म होगी और न तो उस, क्या करूं? भोगों से भोग नहीं मिटते, मिट जाते हैं, भोगों के द्वारा भोग नहीं मिटेंगे। इसकी एक लघु कथा बतलाता हूं। एक राजा थे, उन्होंने, उनका नाम क्या था? नहीं, जजाति जी, जजाति थे, वो बूढ़े हो गए, शुक्राचार्य की कन्या से उनकी शादी शादी थी और एक राजा की लड़की से भी उनकी, तो उन्होंने जब वो बूढ़े हो गए तो कहा मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो संसार का पूरा भोग नहीं कर सका, यह राज्य सारा पड़ा है, स्त्रियां भी हमारी नई हैं, बच्चे भी हमारे अभी छोटे छोटे हैं, अब यदि किसी प्रकार से बुढ़ापा हमारा दूर हो जाता, नवजुवक हमको ये शरीर मिल जाता, युवावस्था मिल जाती, तो मैं कुछ दिन रह करके और भोग लेता, फिर छोड़ देता। तो शुक्राचार्य जी इस विषय में प्रवीण हैं, शुक्र के आचार्य हैं, वैसा कर सकते हैं, तो उनके पास में गए, उनके ससुर लगते हैं, जाकर के कहा जी भाई हमारी ऐसी कोई व्यवस्था कर दें जिससे कि हम बुढ़ापा हमारा दूर हो जाए और नवयुवक बन जाऊं। कहा जैसे, अच्छा एक बात करो, मैं कर तो दूंगा, तुम अपने बेटों में से किसी बेटे को, तुम्हारे चार बेटे हैं उनमें से कहो, तुम्हारी बुढ़ापा कोई ले लेगा तो मैं उनको तुम्हारा बुढ़ापा दे दूंगा और उनकी युवावस्था तुम में लगा दूंगा, फिर तुम वो करते रहना, ठीक। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, फिर पिछले से कहा, फिर मझले से कहा, इसके बाद में छोटे से कहा, कोई राजी नहीं। बड़े से कहा, बड़े जदू थे, जदू जी ने कहा ये भगवान का भजन करने के लिए हमको मिला है, हम आपकी तरफ बेवकूफ नहीं है, हम भगवान का भजन में लगाएंगे, आप हमको जुआ आपको दे देंगे, आप मेरी जुआ अवस्था को संसार के भोग में लगाएंगे, मैं ऐसा नहीं चाहता। साफ उत्तर दे, कहिए जाओ तुम हमारे राज्य से भ्रष्ट हो, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी तुम या तुम्हारे वंश में कोई नहीं होगा, ठीक है ओम अस्तु। एक थे दूसरे, उनको कहा वो राजी हो गया। कौन राजी हो गया? पुरु महाराज जी राजी हो गए। जब राजी हो गए तो उनको शुक्राचार्य जी ने उनकी जुआ अवस्था उनको दे दी और उनकी वृद्धावस्था उसको दे दी। कितने हजार वर्ष तक नौ युवक रहे, अरमान पूरी नहीं और बढ़ती गई। आग में घी देने से आग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए आज तक विषय भोगों को भोग करके किसी को वैराग्य नहीं होगा, वो होगा तो क्षणिक के लिए। तब उन्होंने चिंता की, कहा ऐसे भोगों के द्वारा भोगों का उपशम नहीं होता है, इसलिए हमको वृद्धावस्था ले लेनी चाहिए और युवावस्था उसको लौटा देनी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा ही उन्होंने किया। तो इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं कि वो भोगों से तो ये भाई मन भरेगा नहीं, इसलिए उसको छोड़ करके वृंदावन में जा करके भजन करना ही उचित है। और एक दिन बूढ़ा होने पर तो ये निकलेगा ही हाथ से, तो अभी क्या उन्हें बुद्धिमान आदमी का काम। फिर कहते हैं देखो स्त्री को छोड़ करके जाना नहीं चाहिए, वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए जिन्होंने शरीर दिया है, यदि जाएगा तो तुम्हारा वो चीज भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए माता पिता की सेवा करो और गुरुजनों की और बेटा की प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करके सब ठीक करके विवाह शादी कर दो, तब इसके बाद में जाओ। तो ये तो हमने किया नहीं, फिर कैसे चला जाऊं। अब ये एक संकल्प, अब विकल्प अब देखिए। विकल्प कहते हैं देखो शास्त्र में लिखा है जो स्त्री है एक जलता हुआ कुआं है, यदि स्त्री में फंसे, माने ये पुरुष के लिए स्त्री के लिए दोनों के लिए परस्पर, पुरुष के लिए कहा स्त्री और स्त्री के लिए क्या है पुरुष, दोनों दूसरों के लिए जलते हुए ये अंगारे हैं, इनको छोड़ करके भगवान का भजन ही करना चाहिए। जैसे भरत महाराज जी ने, जैसे नारद जी ने, जैसे और सब ऋषियों महर्षियों ने संसार को समझ करके इनको त्याग करके भगवान का भजन किया है, ऐसे ही करो, तब तो हमको भगवान का भजन ही करना चाहिए। फिर आप सोच रहा भाई ऐसा मत करो, यद्यपि भरत महाराज जी थे 60,000 की 50,000 वर्ष की आयु में संसार को मलवत माने पैखाने की तरफ में त्याग कर दिया ने? और फिर क्या हुआ, संसार छोड़ करके तो गए और एक हिरण के बच्चे को अपना मान लिया, बेटे को तो रख दिया इधर, और स्त्री के प्रति आसक्ति छोड़ दिया, ममता छोड़ दिया, राज्य के प्रति छोड़ दिया, और वो चूंकि वो पूरा हुआ नहीं था इसलिए हिरण के बच्चे को अपना मान करके भजन करते करते हिरण की चिंता करते करते हिरण होकर के जन्मे। कहीं हमारा तो ऐसा नहीं हो जाएगा, इसलिए बड़ा कठिन है। इसलिए परिपक्व हो जाऊंगा ना तब छोड़ूंगा, अभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये विकल्प हो गया, ये विकल्प हुआ। फिर कहते हैं देखो माता पिता भी असहाय हैं, वृद्ध हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए इनको देख लिया जाए, जब ये चले जाएंगे तब हम जाएंगे। अभी स्त्री भी हमारी अभी अभी नई आई है, बच्चा भी अभी छोटा है, ये पाप होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से संकल्प विकल्प होते हैं, यदि ऐसा करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, इसके लिए लिखा भी है ने? फिर कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ करके हमारा प्रति जो भगवान के प्रति निष्ठा है ये इसको रखो, यदि कोई पाप भी होता है पाप से मैं तुम्हें उद्धार करूं। अब देखिए ये एक ये आया संकल्प आया, यहां अब भजन हम ऐसे करेंगे, सब छोड़ देंगे जैसा भी हो, जैसा भी हो मैं वन में जाकर के आठों पहर एक मिनट नहीं बर्बाद हो, न सोएंगे न कुछ करेंगे, खाएंगे भी नहीं, अपने आप यदि आ जाएगा तो मिल जाएगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं, सुखदेव गोस्वामी की तरफ में मैं भजन करूंगा। फिर भाई देखो, भक्ति पथ में ज्ञान और वैराग्य का कोई मूल्य नहीं है। अरे वैराग्य तो बंदर भी करता है, तो वैसा वैराग्य करके क्या होगा, हम जा करके करेंगे तो। महाराज जनक नहीं थे, अम्बरीश महाराज नहीं थे, नंद बाबा और जसोदा और गोपियां नहीं थी, वसुदेव जी नहीं थे, इन्होंने संसार नहीं किया। अब तुम उनसे भी बड़ा उन्नत हो गया जो संसार छोड़ करके जाएगा। इसलिए भक्ति वैराग्य की जरूरत नहीं है, घर में रह करके आराम के साथ में जो कुछ मिल जाएगा, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, घर वालों के साथ में रह करके भजन करना है, यही ठीक है। अब जिस समय जब परिपक्व हो जाऊंगा उस समय जैसा होगा वैसा कर लूंगा। फिर विचार करते हैं, अरे अभी हाल की बात है, चैतन्य महाप्रभु हुए, रघुनाथ दास गोस्वामी हुए, स्वरूप दामोदर हुए, ये सब लोगों ने क्या किया, छोड़ करके भगवान का मतलब। हम समझते हैं कि इसी में उपकार है, वृथा समय नष्ट नहीं करना अच्छा है।
यही हमारी परंपरा भी
है। हरिनाम चल रहा है किंतु विचार हो रहा है, ये बतलाओ अभी हरिनाम पर वो भी चित्त नहीं जा रहा, हरि कथा में चित्त नहीं जा रहा है, इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए हैं ने? ये अनिश्चिता भक्ति है। क्या हो गया, सवेरा हो गया, फिर कभी सोचते हैं अच्छा भाई एकमात्र हरिनाम ही करूं ना और कुछ करूं, केवल हरिनाम करने से हो जाएगा। परीक्षित महाराज जी ने श्रवण किया और सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन करके भगवान को पा लिया, हनुमान जी ने केवल दास्य भाव से भगवान को पाया, प्रहलाद महाराज जी ने स्मरण से पाया, लक्ष्मी जी ने उनकी पूजा करके पाया, एक एक भक्ति के अंकों कर करके भगवान को पाया। और फिर देखते हैं कि एक कोई बहुत से अंगों का पालन करके भगवान को, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसमें पड़ेगा भक्तों का संग करना चाहिए कि नहीं, अपने आप होगा कि नहीं, किसी का संग नहीं करो। फिर कहते बिना भक्तों के संग से होगा नहीं, इस तरह से संकल्प और विकल्प होता रहता है। भक्ति कैसी है, गृह थाको बने थाको, गृह में रहो बाहर में, भगवान का नाम कीर्तन स्मरण ये सब बाधक नहीं होगा। वन में जाएंगे, पेड़ के नीचे गए और पेड़ की डाल टूट करके गिर पड़ी, तब के क्या होगा, क्या होगा। इसलिए सब जगह कुछ कष्ट और कुछ ऐसी बातें हैं, इसलिए जहां पर भी रहे स्थिर चित्त से भगवान का भजन करना चाहिए। कभी भी व्यास जी हैं या और दूसरे लोग हैं या हम लोगों की गुरु परंपरा में जोर नहीं दिया जो त्याग करो घर को, ये जोर नहीं दिया कि तुम त्याग मत करो, जिसके लिए जो सहज भाव है संस्कार के बस तक उसी तरह से कर करते हुए भगवान का भजन कर। पहले ये तो आए जी ये सब प्रभु का है, वन में भी जाएंगे तो वो उन्हीं का है, यहाँ पर भी वही का है, बिना खाए रह नहीं सकते, बिना कुछ ठंड लगेगी तो कुछ शरीर में देना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे जहाँ पर ये सब चीजें नहीं है। इसलिए विचार करके गुरु जी से ऊपर से कर रहा है उस तरह से निष्ठा से भजन करना चाहिए, किंतु अभी आई नहीं है। फिर इस प्रकार से वह निर्णय कुछ नहीं कर पाता, उस समय गुरु की जरूरत है, उसको उचित सलाह दें, जो जहां है वहीं पर रह करके स्थानीय स्थिता तनवांग मनोभी, अपने स्थान पर स्थित रह करके भगवान का नाम कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब करता चले। एक होता है विषय संग्रह, विषय संग्रह माने क्या, विषय के साथ में संग्राम, कभी फाइट होता है, क्या होता है फाइट, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया भागवत इत्यादि में, जिनका चित्त विषयों में रंगा हुआ है विषयों की लालसा है, उनके लिए भगवत प्राप्ति करना बड़ा भारी कठिन है। विषय को जैसे तैसे छोड़ना पड़ेगा, किंतु यह छोड़ना दो प्रकार से होता है। एक तो स्वरूपतः ही उस काम को छोड़ दिया और एक आसक्ति छोड़ना है। पहले आसक्ति छोड़ो, स्वरूपतः मत छोड़ो, इसके बाद में आसक्ति छोड़ने के बाद में धीरे धीरे इधर में आएगा। विषय एक तरह से छोड़ने से आदमी मर जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा ना, कपड़ा पहनना छोड़ देगा ना, क्या कर देगा, घर के अंदर नहीं रहेगा। हम लोग भी घर से निकल करके आए हैं किंतु रहते हैं तो मठ में ही रहते हैं ना, घर को छोड़ नहीं सकते, खाते पीते तो हैं, इसलिए ये सब छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ये कह रहे हैं जिनका चित्त भोगों में लिप्त है, आसक्त है, ये बुरी चीज है आसक्ति। जिसकी आसक्ति नहीं है, सब कुछ रहने पर भी ये प्रभु का है, इस रूप में देखते हैं वो भक्ति के लिए हानिकारक नहीं है। दूर की वस्तु, बहुत दूर की वस्तु है, वो निकट से नहीं पाई जाएगी, बहुत दूर की चीज है। भक्ति बहुत दूर की चीज है, उसको कैसे निकट से पा लेंगे। पश्चिम वस्तु, पश्चिम दिशा में जो चीज है, पूरब में जाने से नहीं मिलेगी। मतलब क्या है? भोग और भक्ति एक साथ एक म्यान में नहीं रहेंगे। एक तलवार एक म्यान में रहती है, दो तलवार एक म्यान में नहीं रहेगी। इसलिए जहां पर भोग ही है वहां पर भक्ति नहीं आएगी। भोग माने अपने लिए और भक्ति है भगवान के लिए, ये दोनों विरुद्ध चीजें हैं। इसलिए ये भोग हमको संसार में खींच रहे हैं और हमारी भजन आसक्ति को भी शिथिल कर रहे हैं। इसलिए मैं संपूर्ण विषयों का संपूर्ण रूप से त्याग करके केवल मात्र हरिनाम करूंगा। ये तो हुआ संकल्प लिया, किंतु एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन भूख लगी, अच्छा आज तो खा लूं, कल से नहीं करें, आज प्याज खा लूं, कल से छोड़ देंगे। फिर कल आया, फिर अच्छा एक दो दिन, अच्छा फिर कर लूंगा। विषयों के साथ में संग्राम हो रहा है, इसको कहते हैं विषय संग्राम। हमने सोचा जैसे आज से हम 16 माला कर लेंगे, किंतु ऐसी परिस्थिति आई मैं नहीं कर सका, आलस्य प्रमाद आया, अच्छा आज थोड़ा सा सो लूं, कल से कर लूंगा। ये विषयों के साथ में संग्राम चल रहा है। इसलिए इसमें क्या करना चाहिए? इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, इस अवस्था वाले हाय हाय करते हुए, कुछ घृणा है इस वस्तुओं में, तभी उसको ग्रहण करते हुए भजन के लिए वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, किंतु सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है, तभी ग्रहण कर लेते हैं। विषय को हम छोड़ नहीं सकते, नाक तो गंध लेगा, हवा लेगा, इसको बंद करें तो मरेंगे, भोजन भी चाहिए और भी चीज चाहिए, किंतु हम ये इसी को भगवान को दे करके और प्रसाद के रूप में थोड़ा सा जीवन निर्वाह के लिए हम करें, संसार को, पूरे संसार को इसी रूप में करें, जीवन निर्वाह करने के लिए ये सब संसार कर रहे हैं, किंतु जीवन निर्वाह करने का लक्ष्य क्या है? प्रभु की प्राप्ति। बस एक ये चीज को ठीक रहे, तब ये संसार बंधन में नहीं डालेगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ये संसार विषय बांध देगा। इसको कहते हैं विषय संग्राम, विषय संग्रह। कभी कभी अपना नियम पूरा कर लेता है और कभी कभी हार जाता है। इस तरह से ये चलता रहा था। कब तक चलता है? जब तक ही निष्ठा नहीं आ जाती। नियमक क्षमा, हम नियम बनाते हैं, ये नियम करेंगे, आज सवेरे 4 बजे उठ जाएंगे और उस समय में स्नान करके हरिनाम करेंगे, सूरज के उदय होते ही अपनी दीक्षा का मंत्र जपूंगा और इसके बाद में तुलसी में पानी दूंगा और इसके बाद में ठाकुर जी की आरती में जाऊंगा और भागवत का एक अध्याय या कुछ या गीता का पढ़ूंगा और इसके बाद में अपना काम में जाऊंगा। एक दिन किया, दो दिन किया, इसके बाद में फिर गड़बड़ी हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है या कोई काम ऐसा आ गया बाध्य होकर के, कोई मिलने वाले आ गए, आप 4 बजे उठे हैं और इतने में कोई मिलने वाला आ गया, विशेष करके टेलीफोन आ गया बहुत जरूरी, उसको अटेंड करते 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 उधर में सवेरा हुआ, कुछ नहीं कर सके। तो इसलिए इसमें क्या करना चाहिए, जरा दृढ़ होना होगा। अब पहले वो सब सुलझा करके तब नाम करूंगा या भजन करूंगा, ऐसा नहीं, पहले ही हरि नाम करके अपना भजन करके तब उसको करूंगा। किंतु वैसा यदि फोन आया, ऐसा कोई बात हुई तो उसको भी देख सुन करके करेंगे, किंतु अपने नियम को निष्ठा से रखेंगे। ये सब अभी निष्ठा नहीं हुई और ये सब चीजें हैं। तरंग रंगिनी, तरंग रंगिनी एक है इसमें, और कहां गया, हरि नाम कर रहे हैं आज, जो कामना करते हैं संसारिक वो पूरी हो रही है। किस लिए पूरी हो रही है, पूर्व जन्म के संस्कार से। हम आरोप कर लेते हैं ये हमारे भजन के वजह से ये सब विषय आ रहे हैं, अथवा हरि नाम कर रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं जो हमारी गोद में है, उसको स्नेह कर रहे हैं, याद आई और विषयों की याद आई और उन विषयों के साथ में रंग गए, चित्त उसमें रंग गया और इधर हरि नाम की माला हाथ में रही और मुख भी बंद हो गया और उसी की चिंता हो रही है, या थोड़ा थोड़ा नाम भी कभी कभी निकलता है, ये विषयों में रंग जाते हैं हरि नाम इत्यादि को छोड़ करके, इसको कहते हैं तरंग रंगी। इन सब को दूर करने पर भी और भी कुछ चीजें हैं जो बाधक होती है, वो क्या होती है, एक मिनट में बता, होती है जैसे पूर्व जन्म में आपने अच्छा काम किया उसका फल आएगा, अच्छा अच्छा आने के साथ साथ में उसमें रम गए, पूर्व जन्म में हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं, अभी तो पूरे नष्ट तो हुए नहीं, उसके बुरे कर्म का फल बुरा आएगा, उसमें मन खराब हो जाता है, उसमें भजन नहीं होता। कुछ भक्ति करते हैं सगुना तो उससे बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, अर्थ भी आता है, यदि उसमें लग गए प्रतिष्ठा में और उस अर्थ में तो भी भक्ति चौपट होगी। इन सब से बच करके विचार करके भगवान का नाम निष्ठा के साथ में तब धीरे धीरे उसमें रुचि होएगी और रुचि होकर के भक्ति में हम अग्रसर हो सकते हैं, धीरे धीरे उसकी कुछ अनुभूति भी होगी, धीरे धीरे जितने कष्ट हैं ये सब कष्ट भी दूर हो जाएंगे, बाधा देने वाली चीजें नहीं रहेगी, भगवान की कृपा से सरल सहज रूप में सभी चीज हो जाए। मूल चीज है शरणागति भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति भी शरणागति, अच्छे भक्तों का संग हो ये सबसे बड़ी बात है, इससे बढ़कर क्या कुछ नहीं। इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ये शुद्ध संतों का, रसिक वैष्णवों का, ततज्ञ भक्तों का संग हमको मिले, जैसे हम अग्रसर हो सकते। कीर्तन करके फिर आरती करेंगे, कल का प्रोग्राम बतला देंगे।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिशे नमः। गवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो।
जो लोग कुछ भक्ति में प्रवेश कर सके हैं, हरि नाम करते हैं, भगवान की कथाओं में रुचि है जिनको, हरि नाम और दीक्षा भी सद्गुरु से प्राप्त हो चुके हैं या अब करने करने में हैं, वो लोग कैसे थोड़ी सी और उन्नत हो सकते हैं, इसके लिए भी हमारे आचार्यों ने विचार किया है। मैं चार दिनों से भक्ति क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, भजन करने से क्या लाभ है और कैसे भक्ति प्रारंभ होती है, इस विषय पर हमने कुछ प्रकाश डाला चार पांच दिन से। ये तो सर्वथा निश्चित है, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है, बिना भक्ति के शांति और सुख कदापि संभव पर नहीं है, न लोक में न परलोक में। एक तो ध्रुव निश्चित है, सिद्धांत है। इसलिए भक्ति की चेष्टा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इसके बाद में अभी कल हम लोगों ने विचार किया, जो हमारे आचार्यों ने, भक्तों ने ये निर्णय किया कि साधक कैसे समझे कि मेरी कुछ उन्नति हो रही है या नहीं, कर रहे हैं और चल रहे हैं, कुछ लाभ नहीं है, अनुभूति नहीं है, तो ये प्रतीत नहीं होता जो मैं भक्ति में अग्रसर हो रहा हूँ कि नहीं। यदि खाने के एक एक ग्रास के साथ तृप्ति होती जाती है, अनुभूति है जो मैं खा रहा हूँ, और वो अनुभूति कैसे, खाने के साथ साथ में और नहीं खाऊंगा, वो ऐसा अनुभव होता जाता है। जब पेट भर जाता है अब नहीं, तो वैसे भगवान की भक्ति भी है। भगवान की भक्ति करने से तीन चीज साथ साथ में होता है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र। भगवान का साधन भजन करने से साथ साथ में भगवान की अनुभूति भी होगी, जिस प्रोपोर्शन में हम भजन कर रहे हैं भगवान की अनुभूति जरूर होगी। चाहे एक ग्रास खाया तो अभी तो अनुभूति तो होगी ही, भले ही भूख और बढ़ जाए एक ग्रास के साथ में और फिर नहीं खाया जाए, किंतु मैंने एक ग्रास खाया ये अनुभूति होती है, उसका रसास्वादन होता है, टेस्ट होता है। तो जितने ही परिमाण में हम खाते जाएंगे उतने ही अब नहीं खाऊंगा ये आते जाएगा, जब पेट भर जाएगा तो अब नहीं खाएंगे, देने पर भी छोड़ देंगे, चाहे जितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो पेट भरने के बाद में अब नहीं लिया जाता, यदि थोड़ा सा अधिक बढ़ा दिया तो उसके बुरे परिणाम हो जाएंगे। भक्ति में ऐसा नहीं होता है, किंतु लौकिक पदार्थ में होता है। हम भगवान का भजन कर रहे हैं और हमें अनुभूति न हो और संसार के विषयों से हमारा कुछ विरक्ति न हो, ये कभी हो नहीं सकता, असंभव है, जरूर अनुभूति होगी। बहुत से लोग भजन करते हैं, कहते हैं जैसे कुछ मालूम नहीं होता जो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसका क्या फल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसी पर हमने कल कुछ विचार किया और आगे कुछ हम विचार करते हैं। अभी भगवान की लीला कथाओं को बहुत बार हमने कहा है, बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर कृष्ण की लीला है। हम साधकों के कल्याण के लिए उनको भजन में कैसे अग्रसर होना चाहिए, उसमें कहाँ कहाँ बारीकियां दोषपूर्ण बारीकपूर्ण दोष है, इसको हम लोग अंगुली से दिखलाते हुए चलेंगे कहाँ कहाँ दोष है, साधक कहाँ कहाँ पर उसको ठोकर लगती है, इस विषय पर हम विचार करें। क्यों नहीं, इच्छा करने पर भी, हरि नाम लेने पर, सुनते हैं महाप्रभु जी कह रहे हैं, नयनं गलदास सुधारया बदनं गदगद रुद्धया पुलकर निचितं बपुह कदातो नाम ग्रहणे भविष्य। नाम लेने से जरूर चित्त द्रवित होगा, जरूर आंखों से आंसू आएंगे, भाव कुछ और हो जाएगा, किंतु यदि नहीं होता है करते हैं तो कहीं डिफेक्ट है। एक आदमी हमारे साथ में मैट्रिक में पढ़ रहा था, वो 12 वर्ष फेल हो गया, 13 वर्ष फिर वो परीक्षा दे रहा है, उस वर्ष भी वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, कुछ कारण है कि नहीं है, जरूर कुछ है। वो तो घर वाले कहते हैं कि दिन भर बेटा हमारा पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है, न खेलता है, न कूदता है, न कुछ करता है, दिन रात पढ़ता है, रात में जकर के पढ़ता है, तो फेल क्यों हो जाता है, कुछ कारण तो जरूर है ना। ऐसे ही हम भजन करते हैं, कुछ कुछ भजन करने से दुख दूर हो जाएगा, किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, यदि कुछ होगी भी तो वह उड़ करके चली जाएगी और परमानंद की अनुभूति होगी। यदि ये नहीं हो रहा है तो हमको क्या सोचना चाहिए, हरिनाम की माला उठाते हैं, लेते ही थोड़ा सा किया और नींद आने लगी, आलस्य आने लगा, हरिनाम चल रहा है और दूसरे से बात भी कर रहे हैं, कैसे है, ठीक है, इधर में ये भी चल रहा है माला, किंतु मुख से जीवा से नहीं आ रहा है, वो माला हाथ चल रहा है, और देखते हैं कि दुख और कितने प्रकार की चिंताएं आ रही हैं, मन इधर उधर लगाते हैं फिर इधर उधर चला जाता है समस्याओं के समाधान के लिए, कुछ गड़बड़ी है, रुचि नहीं आ रही, आसक्ति नहीं आ रही, कुछ जरूर गड़बड़ी है। उसके लिए हमने कल 6 प्रकार की अनर्थों की बातें की। पहले तो खूब उत्साह होगा, आप जहां हरि नाम लिया गुरु जी से, गुरु जी ने भव सागर पार कर गया, एक नाम से ही अजामिल एक नाम किया और भव सागर पार कर गया, वाह बहुत सुंदर बात है, तो हम भी एक नाम करेंगे, और हम एक नहीं, हम आज ही 16,000 करेंगे, 25,000 करेंगे, 16 माला जरूर करेंगे, आर कर कर रहेंगे, 2 दिन किया, 4 दिन किया, जब उसका कुछ फल नहीं देखा, शारीरिक कोई फल नहीं देखा, और देखा जी कुछ दुख भी आ रहे हैं, तो मन गड़बड़ हो गया, कहा जी क्या ये हरिनाम में कुछ फल है कि नहीं है, कुछ अरुचि सी हो गई, फिर कभी रुचि हो गई, बीढ़ विकल्पा संकल्प और विकल्प होते हैं, कल इसको मैंने बहुत व्याख्या की, इसलिए अधिक व्याख्या की जन मैंने ये है कह देता हूँ, मैं घर छोड़ करके भजन करूँ ना घर में रह करके करूँ, घर छोड़ करके भजन करना ही उचित है, फिर सोचते जो घर अभी छोड़ करके गए और पाप लगा तो हमारे जो कर्तव्य है वो कर्तव्य तो पूरे नहीं हुए, स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, संसार के प्रति, और मैं चला जाऊं तो ये तो अब बड़ा भारी दोष होगा। फिर कहते हैं तो फिर सुखदेव गोस्वामी नारद जी ये सब गए तो उनको पाप नहीं लगा, अच्छा तो घर छोड़ कर, फिर सोचता है अरे विद्ध विद्ध माता पिता भाई बंधु इनको छोड़ करके कैसे जाए, तरह तरह के संकल्प और विकल्प आते हैं, ये चिंता करने में हरिनाम की झोली हाथ में रह जाती है। इस तरह से संकल्प विकल्प और विषय, हाँ विषय संग्रह, विषय के संग्राम होता है, अच्छा मैं भजन करूंगा, किंतु विषयों के साथ में संग्राम होने लगता है, विषय माने सोना पीना खाना पीना, लोगों से प्यार स्नेह संसार माया मोह ममता, ये सब चीजें भजन करते हैं इनसे भी संग्राम होता है, मैं अच्छा कल सवेरे उठ करके भजन करूंगा, किंतु हो नहीं पाता, एक दिन किया, 2 दिन, इसके बाद में सिर में दर्द हो गया, नींद पूरी नहीं, सारा दिन ठीक नहीं गया, इसी तरह से विषयों के साथ में संग्राम करते, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। इसके बाद में
तरंग
रंगिनी नहीं, इसके नियम क्षमा। अब हम नियम करते हैं, अच्छा भाई अब ऐसा नहीं होता, अब तो भजन करेंगे जरूर, अब नियम बना ले कुछ, 25,000 नाम 16 माला हमको जरूर करनी है किसी भी स्थिति में, और आरती भी करनी है ठाकुर जी की, रोज करेंगे, रोज तुलसी जी को प्रणाम करेंगे, और जितने भी भक्त आएंगे उनका आदर करेंगे। इस प्रकार से कुछ नियम बनाता है, एक दो दिन चला इसके बाद में नियम अधूरा रहा, पूरा हुआ नहीं, इसलिए अक्षमता होती है, इच्छा करती है किंतु हो नहीं पाता। और इसके बाद में तरंग रंगिनी, यदि भजन करने लगे, नाम कुछ करने लगे और थोड़ा सा विषयों से वैराग्य आने लगा, सम्मान अपने आप छप्पर फाड़ कर खुदा देने लगता है, सब लोगों का आकर्षण हो जाता है, वाह ये तो बहुत वैरागी महात्मा है, ये तो बहुत नाम करते हैं, महाराज जी आप कितना नाम करते हैं? अधिक नहीं करता, मैं तो 1,00,000 करता हूँ, अधिक नहीं हो पाता है बेटा। मन निविष्ट हो जाता है, कभी कभी जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। और कृष्ण की रुचिकर कथाएं बड़ी सुंदर सुंदर, बहुत मनोहारी कथाएं सुनाते हैं, लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं, भगवान की कथाओं में ही ऐसी कुछ शक्ति है, भगवान के नाम में कुछ, उस व्यक्ति में नहीं किंतु भगवान का भजन में ऐसी एक शक्ति है, अपने आप संसार के लोग प्रतिष्ठा देने लगते हैं, उच्च कोटि के महात्मा है ना? इस तरह से उनकी उनके प्रति कुछ स्वाभाविक रूप में श्रद्धा आने लगती है, देखते हैं कि महाराज जी का कंबल जरा पुराना है, ठीक नहीं है, अच्छा कंबल लिया, एक 500 रुपए में खरीद करके महाराज जी के सामने रख दिया, महाराज जी के पैर में मोजे नहीं है, बस सुंदर एक मोजा लेकर के दे दिया, जो जो उनकी जरूरत है अच्छी अच्छी चीजें देने लग जाएंगे, प्रशंसा करेंगे। स्त्रियां बड़ी कोमल हृदय की होती हैं, जहां कुछ सौंदर्य देखा, माधुर्य देखा, बोली में मिठास देखा, कथा में कुछ सरसता देखी, थोड़ी सी उधर में आ जाती हैं, वाह हाथ जोड़ करके बात में बड़े प्यार के साथ में, इनका हजम करना बड़ा भारी कठिन है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ऐसा भजन करने अने आश्री आने लगता है, रिद्धि सिद्धि आने लगती है, इसकी तो बात क्या, वो कहते नहीं हमारे पास पैसा मत आओ, अर्थ ना आओ, प्रतिष्ठा ना आओ, और अपने आप आने लगती है। एक भक्त थे, उनका नाम था माधवेंद्रपुरी बाजी, गोवर्धन में रहते समय ये जो ठाकुर जी नाथद्वार श्रीनाथ जी, उनको सपने दिए जब मैं जमीन के अंदर हूँ, हमको निकालो, आज से 700 वर्ष की बात है, वो ऐसे विरक्त महात्मा थे जो किसी से कुछ नहीं मांगते थे, अपने आप बिना मांगे यदि कुछ आ गया तो उसको ले लिया, दिन रात भजन करते थे, एकदम भजन में निविष्ट रहते थे। वृंदावन में पधारे, उनको ठाकुर जी देखा जी कुछ मांग नहीं रहा था, एक छोटा सा बालक आया, पीली सी धोती पहने, पीली सी चादर पहने, कुछ श्याम रंग का, ऐसा स्वाभाविक रूप में आया जो मानो किसी ग्वारिये का लड़का हो। बोले जी बाबा तू बोलता नहीं है, आंख बंद करके न जाने क्या कर रहा है यहाँ, ब्रज में कोई आकर के भूखा नहीं रहता, तुम 3 दिन से भूखा पड़ा है, मेरी मैया जा रही थी मेड़ पर खेत पर, उसने देखा जी एक बाबा वहां पर बैठा है और भूखा है, इसलिए मैया ने तुम्हारे लिए दूध भेजा, ये मिट्टी के बर्तन है इसी में दूध है, तुम पी लो अभी। तो उन्होंने देखा जैसे एक बच्चा है, फिर आंख बंद कर दिया, किंतु देखा जैसे वो अब ध्यान नहीं लग रहा, इतनी सुरीली बंसी से भी सुरीली उसकी आवाज, उसके हृदय में कांटे की तरफ में चुभ गया और निकले नहीं। इच्छा करिए देख ले, किंतु कहीं ये लड़के लड़की के प्रति सौंदर्य के प्रति दृष्टि न जाए। संत लोग ऐसा भी नीचे में दृष्टि रहे, ऊपर में न रहे। लड़के के प्रति भी ममता न आए, हिरण के प्रति ममता आ गई तो उसको डुबा दिया। तो इस लड़के के प्रति यदि हमारी यदि दृष्टि गई, ममता गई, तो हमको तो और ना जे 10-20 जन्मों के लिए ही डुबा देगी। इसलिए कुछ ध्यान नहीं दिया, किंतु बरबस जो देखा उसका रूप, उसकी मिठास और शब्दों की उसके हृदय में लगी रही। वो तो कहा जी बाबा तू पीता नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, तुम पी करके रख देना, मैं उधर खेत से लौटूंगा, ये बर्तन को लेकर के घर जाऊँगा, तुम पी लेना, भूखा मत रहना। ये कह करके चला गया। अब उसकी छवि उनके हृदय में जो धसी वो निकली नहीं। अब वो जब चला गया तो देख रहे हैं, जब तक था तो देखा नहीं, जब चला गया तो देख रहे हैं। भाई बड़ा सुरीला बोल रहा था, बड़ा ही अद्भुत सुंदर। वो फिर आता तो उसको देखते, अब देखने की लालसा है। कहा अच्छा तब उसने कहा है ये पी लो, दूध पी ले। दूध पीते ही एकदम प्रेम की बाढ़ हृदय में आई। बस अब क्या करा जाए, अब तो हार आधी, हा कृष्ण की टेर लग गई, आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। अनायास ही किसका दूध दिया हुआ है, क्या चीज है वो चिन्मय दूध। बस एकदम प्रेम प्रकाशित होने लगा, अब तो रोने लगा। अरे वो कोई नहीं, वो छलिया था, वही लड़का, वही हमारा आराध्य देव था, और हमने उसको अवज्ञा उसको की और वो चला गया। मैंने उस समय उसे बातचीत नहीं की। यदि उस समय उसके चरण पकड़ लेते, उसे बातचीत करता, उसे प्रेम की भीख मांग लेता,